बहनों को, भाइयों को, सब कोई को हर एक कार्य के बीच के मन जो है अपने स्वार्थ को जो त्याग है इसकी तरफ विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह बहुत ही महत्व की चीज है। स्वार्थ को जो त्याग है उस त्याग के अभिमान को भी त्याग कर देना चाहिए, यानी उस अभिमान से रहित होना चाहिए। त्याग को त्याग वही है कि जो सच्चा त्यागी है और उसमें त्याग का भी अभिमान नहीं है, वह वास्तव के बीच के मां निष्कामी पुरुष है। सभी साधनों के बीच के मां निष्काम भाव की बहुत ही आवश्यकता है। भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, सभी में, और कर्मयोग का जो मार्ग है वो तो निष्काम कर्म का नाम ही कर्मयोग है। जैसे वैराग की सभी साधनों में आवश्यकता है, इसी प्रकार से निष्काम भाव की भी सभी साधनों में आवश्यकता है। कर्म कर करके और उसके फल का त्याग कर देना, उसमें आसक्ति का त्याग कर देना, ये कर्म योग का साधन है। भक्ति के साधन के बीच के मां भगवत अर्थ कर्म करना, भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करना, ये भक्ति के मार्ग में बतलाया है। ज्ञान के मार्ग के बीच के मां कर्मों के मां कर्तापने के अभिमान से रहित होना, कर्मों के मां फल का त्याग नहीं करना, फल के त्याग से रहित होना, राग और द्वेष का त्याग नहीं बल्कि राग द्वेष से रहित होना, नियतं संग रहितं अराग द्वेष त्यक्तं अफल परिपूर्णा कर्मे यतत् साथी उच्यते। गीता के 18वें अध्याय के 23 के श्लोक में सात्विक कर्मों की व्याख्या करते हुए भगवान अर्जुन को कहते हैं, नियतमन शास्त्र भी शास्त्र विपरीत नहीं, नियतम मन शास्त्र भी तुम कर्म कैसा होना चाहिए कि शास्त्र बहित होना, शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए कि अराग द्वेष से जो किया जावे। अराग द्वेष से करना ऐसा नहीं कहते हैं कि राग और द्वेष के बिना जो कर्म हुए, यानी राग द्वेष के बिना किया जाए, अराग द्वेष से कर्म और अफल परेब सुना, कर्म के फल का त्याग करना ये बात नहीं कहते हैं। अफल प्रेम सुना, कर्म के मां जो फल है उस फल की इच्छा से रहित नियतम संग्रहितम अराग द्वेष कृतम अप्रपरेषणा करना ये तत्सात्विक मुच्यते। ये तुम्हारे वह ऐसा जो कर्म है वह सात्विक कहा गया है। तो अराग द्वेष कृतम संग्रहितम, तो राग और संग दो शब्द आए, तो द्वेष के साथ के मां जो राग शब्द है उससे तो ये अर्थ देना चाहिए कि आसक्ति से रहित। जब आसक्ति का अभाव है तो कामना का अभाव उसकी अंतर्गत ही है। और फिर भी साफ आगे बता दिया कि फल की इच्छा से रहित, तो संग रहित से ये लेना चाहिए कि संबंध रहित यानी संबंध विच्छेद, किसी भी कर्म के बीच में कर्तापने का अभिमान का अभाव। कर्तापने के अभिमान का त्याग नहीं, कर्तापने के अभिमान का अभाव, असंग माने उससे संबंध नहीं, संबंध रहित। कर्मों के साथ में संबंध का त्याग, संबंध विच्छेद और आसक्ति से रहित और फल की इच्छा से रहित, और कर्म कैसा कि शास्त्र रहित और करता है नहीं, इस प्रकार के कर्म उसे होते हैं, इस प्रकार से कर्म उसे किए जाते हैं वो नहीं करता। तो ये सात्विक कर्म की व्याख्या है, सांख्य की दृष्टि से है। आपको बताया है गीता की 18वीं अध्याय का 23 का श्लोक है जहाँ भगवान सांख्य की दृष्टि से व्याख्या की है, वहाँ सब प्रकार का अभाव बताया, त्याग नहीं। तो सांख्य का जो प्रकरण है गीता की 18वीं अध्याय में 13 के श्लोक से आरंभ हो गया। पहला कर्मयोग का प्रकरण था, कर्मयोग के मां जो कर्म किए जाते हैं वो भी शास्त्र विहित होते हैं, थोड़ा प्रकार का भेद है। इसी 18वीं अध्याय के मां सात्विक त्याग के नाम से जो बात कही है वो कर्मयोग है, कर्मयोग की दृष्टि से वो बात कही। कार्य मित्र यत कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संयम त्यक्त्वा अलंते व सत्याग सात्विक मत। कार्यम यहाँ कहते हैं कि करना एक कर्तव्य है, इस बुद्धि से किया जाए, कर्तव्य बुद्धि से किया जाए। संग और आसक्ति को त्याग करके माने संग जो है आसक्ति और फल की इच्छा इनको त्याग कर करके जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं माने जो साधक है सात्विक के भाव से करता है। कार्य मित्र यत कर्म करना ही करता देश बुद्धि से नियतन क्रियते अर्जुन जैसे बताया। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्तव्य बुद्धि से जो शास्त्र विहित कर्म जो किया जाता है, फल और आसक्ति का त्याग करके कर जो कर्म किया जाता है, संयम त्यक्त्वा फलं तदेव, संग और माने संग माने आसक्ति और फल को त्याग करके वह सात्विक त्याग है, सात्विक कर्म कर दिया जाए। तो सांख्य की दृष्टि से जो सात्विक कर्म बताए गए और यहाँ भी इस पर सात्विक कर्म इसका नाम रखा जावे तो टक्कर लगा श्री के बीच के वहां, तो वहाँ सात्विक कर्म के नाम से सांख की दृष्टि कह दिया, तो फिर योग की दृष्टि से उन्होंने त्याग के नाम से यह बात कही। सांख की दृष्टि के मां कर्मों का समर्पण है गुणों के ऊपर, गुणों को समझा देता है, गुणों में समर्पण कर देता है, गुण ही गुणों में बरतते हैं। और भक्ति के मार्ग में भगवान के मां समर्पण है। नानि गुणे वे कर्ता यदा दृष्टानुपश्यति और गुणे दृष्ट परम व्यति मद भावन सो दिगच्छति। यदा माने जिस काल के बीच में सांख योग का जो साधक है गुणों से अनकर्ता को नहीं देखता है, अनकर्ता को नहीं समझता है कि गुण ही गुणों में फिरते हैं, ऐसा समझता है और अपने आत्मा को उसे गुणों से कर्मों से शरीर से अलग देखता है। आत्मा इससे अलग है, आत्मा चेतन है, यह सब चीज जड़ है। जिस काल के मां दृष्टा साक्षी हुआ यह पुरुष है, गुणों से अनकर्ता को नहीं देखता है और आत्मा को अलग देखता है, उस काल के मां भगवान कहते हैं वे मेरे भाव को यानी मैं जो सत्यदान घन स्वरूप हूं ऐसे मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गीता की तीसरी अध्याय के 28 के श्लोक में इसको एक खुलासा किया गया। माने 28 के श्लोक में जो बात कही है वो प्रकारांतर से थी, आगे जाकर के 14 अध्याय के 19 के श्लोक में वो बात कही गई। तत्वितु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाभावो, तत्ववेता जो पुरुष है, गुण और कर्म के विभाग के रहस्य को जानने वाला जो तत्ववेता पुरुष है, वह किस प्रकार से समझता है कि गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझ करके और वो आशक नहीं होता। और 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में भी प्रकारांतर से यही बात कही है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थे सुवर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियाएं अपने अपने अर्थों में वर्त रही ऐसी धारणा कर करके नहीं किंचित करो मिति युगतो मन्ये तत्ववित। तत्ववेता पुरुष ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, तो कर्ता अपने का अभाव बतलाया जैसे पश्चिम श्रवण सप्रसन्न जिग्रहण आदि, देखता हुआ सुनता हुआ गंध लेता हुआ, इंद्रियां ही अपने अर्थ में वर्त रही है, सत्यवेता ऐसा मानता है। इंद्रियां इंद्रिया से सुवर्तनता, इंद्रियां ही अपने अर्थों में वर्त रही है, यानी नेत्र इंद्रिय रूप को देखती है, कर्ण इंद्रिय शब्द को सुनती है, आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। कहीं तो कह दिया कि ज्ञानी जो पुरुष है वो कर्मों को शरीर ऊपर छोड़ देता है, कहीं दिखला दिया कि इंद्रियों के ऊपर छोड़ देता है, कहीं कह दिया कि गुणों के ऊपर छोड़ देता है। बात एक ही है, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और शरीर ये गुणों का ही विस्तार है। शतरज तम ये 3 जो गुण है उनका ये सब विस्तार है, इसलिए बात एक ही है। तो ज्ञान के मार्ग वाला तो प्रकृति के कार्य जो गुण और उनके कार्य जो मन बुद्धि शरीर इंद्रियां और 5 भूत और 5 इंद्रियों का विषय इत्यादि के जो ये शरीर का समूह है, अव्याकृत माया और माया का समूह ये शरीर, और शरीर के वहां जितने जो एक प्रकार से तत्व हैं, ये प्रकृति के तत्व होने से प्रकृति को ही स्वरूप है। तो ज्ञान के मार्ग वाला तो क्रिया को प्रकृति पर छोड़ देता है, कार्य कर्म करते तो हेतु प्रकृति रूचि थी, जस तो कार्य 5 भूत और 5 विह और 13 करण माने 10 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय और 3 मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण, ये 23 पदार्थ जो है प्रकृति से उत्पन्न है और इनसे सब यह क्रिया होती रहती है। ज्ञान के मार्ग वाले ज्ञानी जो पुरुष है आत्मा को क्रिया रहित समझता है, गुण माने गुणों रहित, गुणों से रहित, कर्मों से रहित, क्रिया से रहित, आकार से रहित, विकार से रहित, आत्मा निर्विकार है, अक्रिय है, ऐसा समझता है। तो वे सारी क्रिया जो कुछ घटना क्रिया होती है सब एक प्रकार से इस शरीर पर ही छोड़ देता है। ये शरीर के जो तत्व है या अंग हो तत्व हो, जो शरीर में जितने जो पदार्थ है इन पर ही छोड़ देता है, और ईश्वर का जो भगत है वो ईश्वर पर छोड़ देता है। यदि उसमें कर्तापना का भाव है तो यूं मानता है कि मैं ईश्वर के लिए करता हूं, तो भगवान कहते हैं कि मदर तमद कर्माणी कुरंग सिद्धि मुआपसी, मेरे अर्थ भी कर्म करता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, और जो मेरे में समर्पण कर देता है उसकी बात ही क्या है। और कर्मों को करकर के भगवान के समर्पण करना, उसकी अपेक्षा वो और ऊंचे दर्जे का है कि खुद भगवान की कठपुतली बन जाता है, और भगवान जो करवाते हैं, जिससे कर्म होते हैं वो करता नहीं। जैसे ज्ञान के मार्ग में कर्ता का अभाव दिख रहा है प्रकृति में कर्मों को छोड़ करके, और भक्ति के मार्ग में भी कर्तापने का अभाव दिखलाया भगवान में कर्मों को छोड़ करके। चेतसा सर्व कर्माणि मई संन्यस्य मत भगवान कहते हैं कि चित से सारे कर्मों को मेरे में समर्पण कर करके और मेरी शरण आ जा। अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं गीता की 18वें अध्याय के 57 के श्लोक में, और गीता की 5वें अध्याय के वहां अपने कर्मों के छोड़ने की बात है, जो इंद्रियों पर और विषयों पर छोड़ दी कि इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में बरत रही है, मैं कुछ भी नहीं करता ऐसा ज्ञानी मानता है। वहां भक्ति के मार्ग के मां ये बताया कि ब्रह्मण्या धाये कर्माणी संयम तत्वा करोती है निपते न सपापे न पदम पत्र मीमांसा। ब्रह्मणी जो परमात्मा के बीच के मां कर्मों को समर्पण कर करके जो आपने केवल नाम मात्र का करता होकर करता है, तो वो पाप करके लिपायमान नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, और जल में रह करके जल को स्पर्श नहीं करता, इसी प्रकार से पाप को स्पर्श नहीं करता। यह संसार जो है सो पापमय है, ऐसे इस पापमय संसार के मां रह करके भी वो पाप के द्वारा लिपायमान नहीं होता। संसार में जन्म लेकर और संसार में रह करके भी उसे कर्मों से वो रहित है, और संसार भी पाप में है और कर्म भी पाप में है। किंतु जो आदमी भगवान के सब कर्मों को समर्पण कर देता है वो फिर उसे पाप से लिपायमान नहीं होता। तो प्रक्रिय चलता है अपने में, जब तक कर्ता अपने का अभिमान है तो उसको ये विचार करना चाहिए कि कर्मों के बीच के मां जो अपनी आसक्ति है और कर्म के फल की जो इच्छा है, इनका त्याग कर देना चाहिए। और इससे भी बढ़कर के ये बात है कि भगवत अर्थ कर्म किया जावे तो इसमें समझो कि भक्ति भी शामिल हो जावे तो और भी उसका दर्जा ऊंचा बन जावे। कर्म जो करता है उसमें कर्ता अपने का अभिमान तो है, पर वो शुद्ध अभिमान है, वो अपने लिए नहीं करता, भगवान के लिए करता है। जो भी कुछ करता है भगवान के लिए, क्यों? जैसे रुपयों का दास दिन भर जो चेष्टा करता है वो रुपयों के लिए करता है, और रुपयों का दास है एक निष्ठ रुपयों का भक्त है। इस प्रकार से भगवान का जो एक निष्ठ भक्त होता है वो सारी क्रिया भगवान के लिए करता है, और जब आगे और बढ़ जाता है तो उसकी सारी क्रिया भगवान के लिए होती है, वो करता नहीं। वो अपने आप को और अपने इंद्रियों को, शरीर को, मन बुद्धि को और अपनी क्रिया को सब को भगवान के मां समर्पण कर देता है, फिर भगवान ही उससे ऐसा करवाते हैं। जैसे कठपुतली को सूत्रधार जो नचाता है जो कठपुतली नाचती है, तो इसी प्रकार से थी जो भगवान की कठपुतली बन जाता है फिर उसे जो करवाते हैं तो सब कर्म भगवान ही करवाते हैं। तो ये भक्ति के मार्ग के बीच के मां ये उत्तम मार्ग है, इसमें कर्तापने के अभिमान का अभाव है। कर्मयोग के मां भी ममता और अहंकार का अभाव बतलाया, ममता और अहंकार तो ऐसी ये गंदी चीज है, त्यागने के योग है, किसी भी मार्ग से चले आगे जाकर उसका त्याग हो ही जाता है। बुद्धिमान आदमी तो पहले से ही त्याग कर देते हैं, आगे जाकर के त्याग हो ही जाता है। उस कोटि के पुरुष के बीच के मां जब वो परमात्मा के नजदीक पहुंचता है तो किसी भी मार्ग से चले उसमें ममता और अहंकार का त्याग आ ही जाता है। और जब तक अहंता है तब ममता साथ में है ही, क्योंकि ममता जो है कार्य और अहंता कारण है, और कार्य जहां वहां कारण अवश्य है। अब ख्याल करना कर्मयोग के मां ऊंचे दर्जे में, कर्मयोग के ऊंचे दर्जे में भी अहंता ममता का त्याग भगवान ने बतलाया, भक्ति योग के मां भी बतलाया और ज्ञान योग के मां भी बतलाया। ये आपको ख्याल करना चाहिए। कर्मयोग में तो गीता की दूसरी अध्याय के 71 के श्लोक में ध्याय कामान ये सर्वान उमांसर्ति निष्प्रियो निर्ममो निरहंकार स शांति मदि गच्छति। ये पुमान जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को स्प्रिया माने जो आसक्ति का द्योतक है और स्प्रिया को त्याग करके यानी स्प्रिया से रहित होकर के और हंता और ममता से रहित होकर के जो संसार में विचरण करता है वह शांति को यानी जो परम शांति उसको प्राप्त होता है। तो ये कर्म योग का प्रकरण है। अर्जुन ने गीता की दूसरी अध्याय के 54 के श्लोक में पूछा था कि कर्मयोगी किस प्रकार से थी आपने संसार में विचरण करता है, तो उसके विचरण करने की बात बतलाई माने वो कैसे करता है कैसे चलता है। तो चलता है पैरों से चलता है ये बात नहीं, चलने का मतलब है कि किस प्रकार का वो आसन करता है। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी जो है स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है वो किस प्रकार से चलता है यानी आचरण करता है। कि सारे पदार्थों में कर्मों में कामना से कामनाओं का त्याग कर करके के और अहंकार और ममता से रहित होकर के और निष्प्रिय भाव से विचरण करता है, इससे उसको परम शांति मिलती है या वो परम शांति को प्राप्त है, ये अर्थ भी कर सकते हैं। अब भक्ति के मार्ग में आपको बतलाया जाता है, भक्ति के मार्ग में गीता की 12वीं अध्याय के 13 के श्लोक में बतलाया है अज्ञशास्त्र भूतानां मैत्रेय करुणेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है, कैसा आपका भक्त आपको प्यारा है कि जो प्राणी मात्र में द्वेष भाव से रहित है और हेतु रहित समझो कि सब पर दया करने वाला और सबसे प्रेम करने वाला है और ममता रहित और अहंकार रहित क्षमावान और सुख और दुख में सम है। जो कुछ जिदिच्छा से दैविच्छा से आकर के प्राप्त हो जाए उसी में सदा संतुष्ट है और बुद्धि जय की स्थिर है और मन जिसके बस में है, मन को जिसने जीत लिया है और मन को जीत करके और बुद्धि को स्थिर करके बुद्धि और मन दोनों को मेरे में समर्पण कर चुका है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो यहाँ भक्ति के मार्ग में उस कोटि के भक्त ने हमता ममता का अभाव बतलाया और ज्ञान के मार्ग के बीच के मां गीता की 18वीं अध्याय के मां जो 50 का श्लोक है उसमें यह बात कही कि मैं ज्ञान की जो परानिष्ठा है वो मेरे ससुर में तने कहूंगा, ये प्रतिज्ञा कर करके। और भगवान 53 के श्लोक में कहते हैं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतु ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इसके माँ जो हंकारम, हंकार है ना, हंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य, माने हंकार और बल का अभिमान और दर्प माने घमंड, काम और क्रोध और भोग सामग्रियों